ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
तीसरा अध्याय कर्म योग की व्याख्या। और पिछले बुधवार हमने जो 34वां श्लोक लिया जिसमें भगवान दुखालय और अशाश्वत ये जो दो स्वरूप हैं भौतिक संसार के इसके संदर्भ में दो बातें कही पिछले श्लोक में। दुखालय है जब इंद्रियों के अर्थ मतलब उनके विषय के संपर्क में आते हैं तो दुख का अनुभव दुख योन एवते। और यदि कोई कृत्रिम रूप से अपने इंद्रियों और इंद्रियों के अर्थ में कोई सुख भी ढूंढ ले क्षणिक वो रहेगा। इसलिए अशाश्वतता उसके अंदर क्या दिखती है कि राग द्वेष व्यवस्थित रहते हैं। किसमें व्यवस्थित रहते हैं? जब इंद्रिय और इंद्रिय के जो विषय हैं उनका संपर्क स्थापित होता है तो राग और द्वेष ये जो दो द्वंद हैं ये उसमें व्यवस्थित रहते हैं। तो अब इसके पश्चात अर्जुन का प्रश्न है कि यदि मैं राग और द्वेष दोनों के ऊपर उठ जाऊं या कोई राग और द्वेष दोनों के ऊपर उठ जाए तब उसे क्या हासिल होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है इस अध्याय का। यह श्लोक श्रील प्रभुपाद ने बहुत बार अपने प्रवचनों में दोहराया और इस पर प्रवचन भी प्रभुपाद ने बहुत किए। तो आज के श्लोक में भगवान एक बहुत ही गुह्य रहस्यमय व्यवहारिक ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं जो कि आज 21वीं सदी में कलयुग में 2013 में हम कैसे अपने व्यक्तिगत जीवन में और सामूहिक सामाजिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कैसे इसको अपना सकते हैं ये आज हम देखेंगे। श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मा स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को श्रेयान, श्रेयान का अर्थ है कि उससे बेहतर या बेहतर। स्वधर्मो विगुणः अपने स्वधर्म को दोष रूप से भी यदि कोई पालन किए करे अर्थात त्रुटिपूर्ण गलतियों के द्वारा भी यदि अपने स्वधर्म का पालन करता है तो श्रेयान वो बेहतर है। किससे बेहतर है? परधर्मात् स्वनुष्ठिता। किससे बेहतर है? दूसरे के धर्म में बहुत अच्छी प्रकार से अनुष्ठित रहना। यहां तक कि भगवान कह रहे हैं स्वधर्म निधनम श्रेय, यदि वो अपने स्वधर्म का पालन करते करते उसका निधन भी हो जाता है। ये शब्द तो जानते होंगे निधन, निधनम, यदि उसका निधन भी हो जाए अपने स्वधर्म का पालन करते समय श्रेय, उसमें भी उसका श्रेय छिपा हुआ है। और जो महत्वपूर्ण पंक्ति आज के श्लोक की है परधर्मो भयावह, जो परधर्म है किसी के लिए वो भयानक साबित हो सकता है। तो श्रील प्रभुपाद का अनुवाद इस प्रकार से है, अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वयं के कर्म को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तो बहुत ही रेवोल्यूशनरी श्लोक है ये आज का। भगवान श्री कृष्ण हालांकि अर्जुन को उस समय सुना रहे हैं कि कैसे तुम्हारा युद्ध नहीं लड़ना भयावह साबित होगा, परंतु अर्जुन के साथ साथ भगवान हम सब को, जैसे मैंने कहा, आज कलयुग में भी यदि हम इस श्लोक का पालन ठीक से नहीं करें या गलत तरीके से करें तो भयावह परिणाम जो दिखने में आ रहे हैं, बहुत से भयावह परिणाम पहले से ही दिखने में आ रहे हैं, यदि हम व्यक्तिगत रूप से पालन न करें तो हमारे जीवन में कैसे इसके भयावह परिणाम हो सकते हैं। तो आज के हमारे चर्चा के विषय इस प्रकार से रहेंगे, पिछले श्लोक से संबंध, और ये सारे जो शब्द हैं श्रेयान, स्वधर्म, विगुण, परधर्मो भयावह, इन सब शब्दों की व्याख्या एक एक कर लेनी होगी। और हालांकि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं आज के श्लोक में। तो सबसे पहले पिछले श्लोक से संबंध। तो पिछले श्लोक में जैसे कि हमने बताया, भगवान ने राग द्वेष ये कहां व्यवस्थित हैं और राग द्वेष से परे व्यक्ति को क्यों जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, राग द्वेष से मुक्ति, ये भगवान ने पिछले श्लोक में बताया। तो अर्जुन का प्रश्न कि ठीक है मैं राग द्वेष के परे चला जाऊं, उसमें व्यवस्थित न रहूं, या मैं अपने आप में राग द्वेष को व्यवस्थित न करूं, तो भगवान कह रहे हैं राग द्वेष से मुक्ति के पश्चात क्या होता है, व्यक्ति अपने स्वधर्म को पहचानता है। तो बहुत ही सुंदर कनेक्शन है पिछले श्लोक से। हमें यह समझना है कि आज का श्लोक पिछले श्लोक को समझे बिना नहीं समझ पाएगा, क्योंकि यदि केवल आज का श्लोक कोई पढ़े कि हां भाई मुझे मेरे स्वधर्म में व्यवस्थित रहना है, परंतु वो स्वधर्म में व्यवस्थित रहने की जो पहचान है उसकी शुरुआत या उसकी नींव, उसकी बुनियाद कहां पर है, पिछले श्लोक में, कि सबसे पहले अपने नियत कर्म, रोजमर्रा के कर्म करते समय कैसे जीव राग और द्वेष से परे जाए, लव एंड हेट्रेड, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन, ये सब जो द्वंद्व हैं, इनसे जब हम ऊपर उठेंगे तब जाकर अपना स्वधर्म हम पहचानेंगे, और वो है आज के श्लोक की व्याख्या। तो सबसे पहला शब्द भगवान ने इस्तेमाल किया है श्रेयान। तो श्रेय की प्राप्ति कराने वाला, तो जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति हमें हमारे वास्तविक श्रेय को प्राप्त कराकर दे, उसे कहेंगे श्रेयान। तो अब मैं इसके विषय में सोच रहा था, ये जो भगवान ने श्रेयान शब्द इस्तेमाल किया है, दो दफा आज के श्लोक में इस्तेमाल किया है श्रेय शब्द, तो श्रेय ये शब्द भगवान ने इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि दूसरे अध्याय में अर्जुन ने श्रेय शब्द इस्तेमाल किया था, और तीसरे अध्याय में, इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान अर्जुन ने पुनः श्रेय शब्द इस्तेमाल किया। तो आपको दिखाने से पहले छोटा सा क्विज बताइए, 2.7 अर्जुन ने श्रेय शब्द कब कैसे इस्तेमाल किया, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये 2.7। हाँ नहीं वो नहीं, कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम शाधी माम त्वाम प्रपन्नम। तो उसमें से हम ये लाइन लेंगे यत् श्रेयस्यान, यहां पर अर्जुन कौन सा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, श्रेय जो भगवान ने आज के श्लोक में दो दफा इस्तेमाल किया है। तो अर्जुन भगवान के सामने ये प्रस्ताव रख रहे हैं, कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेत, मैं पूर्ण रूप से सम्मूढ़ हो चुका हूं और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है और मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है। इसलिए हे भगवान, मैं आपका शिष्य बनकर आपको गुरु मानकर मैं अपना श्रेय, वास्तविक श्रेय मेरा क्या है वो जानना चाहता हूं। यत् श्रेयस्यान निश्चितम, निश्चित रूप से बताइए हे गुरुदेव, क्योंकि अभी अर्जुन इस श्लोक में शिष्य बन रहे हैं तो भगवान को गुरु मान रहे हैं, तो हे जगत गुरु आप निश्चित रूप से मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। बहुत ही भावना से अर्जुन ने श्लोक कहा था, ये श्लोक के अंदर अर्जुन की भावनाएं बहुत ही, अर्जुन का जो उद्गार है वो बहुत ही तीव्रता से व्यक्त किया गया, इसलिए भगवान को अब तक याद है वो वर्ड याद है श्रेय, क्योंकि अर्जुन ने ये उत्कंठा से पूछा था कि मेरे श्रेय के विषय में कुछ बताइए। एक तो वैसे ही अर्जुन भगवान के भक्त, और इस श्लोक में अर्जुन भगवान के सामने कार्पण्य, एक नम्र शिष्य के रूप में प्रस्तुत होकर पूछ रहे हैं, तो भगवान क्यों नहीं अर्जुन का ये श्लोक याद रखेंगे पूरे भगवद गीता सुनाते समय। और भी बहुत से श्लोक भगवान ने याद रखे अर्जुन के। तो ये कनेक्शन आज के श्लोक का 2.7 से, और 3.2 में अर्जुन ने फिर से ये प्रश्न पूछा था, तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयोहम आपनोयाम। देखिए दोनों में दो वर्ड कॉमन है, कौन से, श्रेय और निश्चितम। अर्जुन एकदम निश्चित चाहते हैं कि मुझे निश्चित रूप से बताइए परफेक्टली कि क्या मेरे लिए श्रेयस्कर है। तो अब दो बार उसको रिपीट कर निश्चित वर्ड को, श्रेय वर्ड को, तो भगवान ने भी आज के श्लोक में दो बार श्रेय वर्ड यूज किया, चलो मैं भी दिखा दूं कि तुमने जो निश्चित रूप से श्रेय वर्ड यूज किया दो बार 2.7 3.2 में, तो मैं भी निश्चित रूप से आज के श्लोक में तुम्हें निश्चित श्रेय क्या है वो बताऊंगा। तो ये कनेक्शन श्रेय वर्ड का इन दो श्लोकों से। अब दो प्रकार के श्रेय बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। तो जो श्रेय प्रथम अध्याय में अर्जुन अपेक्षित कर रहे थे वो भौतिक स्तर पर था, और भौतिक स्तर का श्रेय अर्जुन की अपेक्षा में क्या था कि यदि मैं अपने स्वजनों को नहीं मारूंगा तो मुझे, और नहीं मारकर यदि मैं हस्तिनापुर का राज्य उन्हें दे दूंगा तो मुझे पुण्य मिलेगा, और यदि मैं अपने स्वजनों को मारकर हस्तिनापुर का राज्य स्वयं के लिए मैं ले लूंगा तो मुझे पाप तो अर्जुन प्रथम अध्याय में पाप पुण्य में अटके हुए थे। तो पाप पुण्य क्या होता है, ये भौतिक स्तर पर। तो भौतिक स्तर का भी श्रेय बताया गया है गीता में अर्जुन के द्वारा। तो क्या था भौतिक स्तर का श्रेय? स्वर्गवास का अर्थ है स्वर्ग में निवास। और स्वर्ग में निवास का अर्थ क्या है कि स्वर्ग में यदि कोई पहुंच जाए तो जितनी सुख सुविधाएं हैं वो उसे मिलनी है वहां पर, वहां जाकर उसको कोई पुण्य करने की जरूरत नहीं है। जैसे इस भौतिक संसार में भी ऐसे प्रगत देश हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका, यूके इत्यादि, वहां पर कोई ये न के न प्रकार टपक जाए, पहुंच जाए। भारतीय यही प्रयास करते हैं, ये न के न प्रकार मुझे वहां का वीजा मिल जाए, ग्रीन कार्ड मिल जाए, बस वहां जाने के बाद फिर वो समा। कई तो उधर अपना पासपोर्ट फेंक देते हैं तो गवर्नमेंट को संभालना पड़ता है ये कंट्री में। तो वो स्वर्ग भी ऐसा ही है। स्वर्ग क्या है कि वहां पर लोग ये न के न प्रकार पहुंचना चाहते हैं। एक बार पहुंच गए, एंट्री कर लिया अंदर, एंट्री करना इतना मुश्किल है, लेकिन एक बार एंट्री कर लिया तो फिर भाई तुम्हारे लिए सोमरस का प्याला रोज रेडी रहेगा, तुम्हारी अप्सराएं रेडी रहेंगी, जो भी सुख सुविधा वहां के सब कुछ तुम्हारे लिए निर्धारित। तो इसलिए लोग भौतिक स्तर पर श्रेय इस प्रकार का चाहते हैं। अब देखिए, कोई कहे कि अरे मैं तो ये पाप पुण्य में विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास नहीं करता कि ना कोई नरक भी है कोई स्वर्ग भी है, मैं तो विश्वास करता हूं साइंस पर, मैं तो विश्वास करता हूं अपने खुद के बलबूते पर जो मैं हासिल करता हूं उस पर। हाँ, तो प्रवृत्ति वही है कि कोई यदि उस प्रकार के साधन चाहता है जिसके द्वारा अब जो भी उसने परिश्रम किया है उसका परिणाम उसे क्या मिले कि अब उसे परिश्रम न करना पड़े। अधिकांश भौतिक स्तर पर लोग परिश्रम क्यों करते कि मैं परिश्रम कर लूं, बस 30-40 साल पूरा इतना पैसा इकट्ठा कर लूं, उसके बाद फिर इत्मीनान से ऐश करूंगा। ये क्या प्रवृत्ति है? वही प्रवृत्ति है स्वर्ग जाने की, स्वर्गवासी होने की। स्वर्गवासी होने की प्रवृत्ति है कि अमेरिका जाकर सेटल हो जाऊंगा, यूके जाकर सेटल हो जाऊंगा, यहां जाकर सेटल हो जाऊंगा, वहां जाकर सेटल, बंबई जाकर सेटल हो जाऊंगा। पता नहीं वहां पर लोगों को क्या स्वर्ग दिख रहा है। तो प्रवृत्ति वही है। तो वो भौतिक स्तर पर श्रेय और आध्यात्मिक स्तर पर वैकुंठवास। तो जो भगवान अर्जुन को अब दूसरे अध्याय से आगे बताना शुरू किए अर्जुन के उस श्लोक के पश्चात, तो भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन तुम ये पाप पुण्य में क्यों अटके हुए हो? क्योंकि प्रथम अध्याय में अर्जुन किस में अटके हुए थे? अरे मैं इनको मारूंगा तो नर्क जाऊंगा, नहीं मारूंगा तो स्वर्ग मिलेगा। क्या नर्क स्वर्ग, मैं तुमको कहां ले जा रहा हूं? मैं तुमको वैकुंठ का टिकट दे रहा हूं यहां पर, मैं वैकुंठ पति, मैं वैकुंठ पति बैठा हूं, तुम्हारा रथ हांक रहा हूं और मैं तुमको वैकुंठ का टिकट दे रहा हूं और तुम अटके हुए हो कि ये पाप वो पुण्य क्या होगा, ये पाप की वजह से पुण्य की वजह से क्या मिलेगा ये सब। तो इसलिए अर्जुन के मन में जो श्रेय की परिभाषा थी वो भौतिक स्तर की थी। और यहां भगवान जो श्रेय की परिभाषा अर्जुन को दे रहे हैं कि इस संसार में रहते हुए तुम कैसे वैकुंठवासी बन सकते हो, यह है आज का श्लोक। वो श्रेय क्या है कि इस संसार में रहते हुए तुम वैकुंठवासी कैसे बन सकते हो अपने स्वधर्म में अपना जीवन जीते हुए। भगवान क्या कहना चाहते हैं? अपने स्वधर्म में अपना जीवन जो जीता है वो जीते जी इसी भौतिक संसार में वैकुंठवासी कहलाता है। तो ये है श्रेय शब्द। और श्रेय शब्द के दो अर्थ बताए हैं संस्कृत के अनुसार। एक है कल्याण और एक है यश। अब देखिए कल्याण, अक्सर हम ये शब्द सुनते हैं कि अरे हाँ मेरा तो कल्याण हो गया, उसका कल्याण हो गया, या उसको नेगेटिवली तेरा तो कल्याण हो। पता नहीं विवाह को भी कल्याण बोलते हैं कल्याण मंडप। तो यहां पर भगवान ये कह रहे हैं कि अर्जुन यदि तुम्हें अपना जीवन वास्तविक रूप में कल्याणकारी बनाना है या यशस्वी बनाना है, क्योंकि एक योद्धा के लिए ये दोनों जरूरी है। योद्धा को यश चाहिए, यश किस रूप में चाहिए, विजय, विजय के रूप में उसे यश चाहिए और उसका उद्धार हो। अर्थात यदि वो युद्ध भूमि में मर भी जाए तो क्या हासिल होता है उसे, कल्याण, उसका कल्याण निश्चित है। युद्ध भूमि में क्षत्रिय यदि अपने प्राण त्याग दे, युद्ध लड़ते लड़ते अपनी शूर वीरता दिखाते दिखाते यदि वो अपने प्राण त्याग दे तो उसे उसका कल्याण निश्चित है, और विजय यदि प्राप्त हो तो उसका यश निश्चित है। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि ये जो दोनों अर्थ हैं श्रेय के, ये भी तुम्हें हासिल हो सकते हैं। अब अगला शब्द हम लेते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अब तक यदि आप ध्यान नहीं दे रहे होंगे तो अभी ध्यान दीजिए, स्वधर्म, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये दो शब्दों से जुड़कर बना है, स्व और धर्म। स्व का अर्थ बताया गया है स्वाभाविक। अक्सर हमें लग रहा होगा कि स्व का अर्थ है स्वयं, स्वयं किया हुआ धर्म। यहां पर स्व का अर्थ है स्वाभाविक और धर्म का अर्थ बताया गया है कर्तव्य। तो स्वधर्म ये शब्द का पूरा अर्थ हुआ स्वभाव के अनुसार किया गया कर्तव्य। एक एक शब्द पर गौर करना होगा आपको, स्वभाव के अनुसार किया गया कर्तव्य। मैं क्यों आपको कह रहा हूं कि एक एक शब्द पर गौर करना है आपको, क्योंकि एक और शब्द इसी प्रकार का आता है संस्कृत में, उसको कहते हैं स्वकर्म। एक है स्वकर्म और एक है आज का श्लोक में जो है स्वधर्म। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि स्वकर्म का अर्थ क्या हुआ, हाँ स्वभाव के अनुसार किया गया कर्म, इतना मुश्किल नहीं था। अब देखिए स्वभाव के अनुसार किया गया कर्म उसको स्वकर्म कहते हैं। और अधिकांश हम देखते हैं कलयुग में हम लोग सब स्वकर्म में लगे हुए, मुझे ये अच्छा लगा, मेरे स्वभाव के अनुसार मैंने ये किया, मुझे ये जगह अच्छी लगी, मेरे स्वभाव के अनुसार ये जगह है, मेरे स्वभाव के अनुसार ये घर है, मेरे स्वभाव के अनुसार ये व्यक्ति है, ये मेरे स्वभाव के अनुसार ये स्वभाव बस। जैसे एक बार ट्रेन में एक बनिया और एक चाइनीज, क्या कॉम्बिनेशन है देखो, एक बनिया और एक चाइनीज वो ट्रेन में जा रहे हैं, तो आमने सामने बैठे हैं, एक मच्छर आता उड़ते हुए और वो चाइनीज के नाक पे बैठता है, वो तुरंत पकड़ता है उसको और खा लेता है। स्वभाव उसने तुरंत पकड़ा उसको, खा लिया। बनिए ने देखा अगला मच्छर आया, उसका भाई होगा शायद, तो मच्छर दूसरा मच्छर आया, वो ऐसे घूम रहा था बनिए के अब नाक के इर्द गिर्द, तो बनिए ने उसको पकड़ा और बोला ले 5 रुपए में। तो चाहे वो कहीं पर भी हो, वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। तो ये है स्वभाव के अनुसार कर्म। तो दोनों में अंतर अब ये है कि हमने स्वधर्म की परिभाषा क्या समझी थी, स्वभाव के अनुसार कर्तव्य। बहुत मेजर डिफरेंस स्वकर्म और स्वधर्म में क्या है, एक है कर्म एक है कर्तव्य। तो कर्म और कर्तव्य में अंतर क्या हो गया, कर्तव्य हमें जिम्मेदार बनाता है। When we talk of duty, कर्तव्य, that makes us responsible. But if we simply talk of karma or action, that might not include responsibility. इसलिए भगवान ने आज के श्लोक में ये नहीं कहा श्रेयान स्वकर्म विगुण, भगवान ने क्या कहा है श्रेयान स्वधर्मो विगुण। अर्जुन तुम युद्ध करने का कर्म मत करो, तुम युद्ध लड़ने का धर्म करो, अर्थात कर्तव्य। तो इससे हमें ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि भगवान ने आज के श्लोक में स्वकर्म न इस्तेमाल करते हुए स्वधर्म शब्द क्यों इस्तेमाल किया है। तो हमारे जीवन में भी यदि आज का श्लोक हमें उतारना है तो किस प्रकार से उतारना है कि हम भी कैसे हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में ये जाने ये पहचाने कि क्या मैं स्वकर्म कर रहा हूं या स्वधर्म कर रहा हूं, क्योंकि स्वधर्म हमें जिम्मेदार बनाएगा, केवल कर्म हमें जिम्मेदार नहीं बना। इसलिए जो लोग बोलते हैं ना कि कर्म ही पूजा है, यह समझना आवश्यक है कि यदि वो धर्म के आधार पर किया जाए, और धर्म का अर्थ यहां पर बताया गया है कर्तव्य, तब जाकर वो पूजनीय बन सकता है। तो हम हमारे जो भगवद गीता कोर्स में लेते हैं ये बेसिक फर्स्ट डे में इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, तो इसमें हम ये सुनाते हैं जो चार चीजें पशु और मनुष्यों में समान हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्य एतद पशु भी नराणाम। तो ये प्रसिद्ध श्लोक हितोपदेश से, आहार निद्रा भय मैथुन, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग समन्य सामान्य है, समान रूप से है, किसमें पशु भी नराणाम, पशु में और हम नरों में, हम मनुष्यों में कॉमन। अंतर क्या है हम में और उनमें, ये चार तो कॉमन है, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे न ही न पशु भी समाना। क्या है डिफरेंस, धर्म, वो जो श्लोक है हितोपदेश का उसमें डिफरेंस क्या बताया है धर्म। तो धर्म आज के श्लोक से और हितोपदेश के श्लोक से कनेक्ट करें तो क्या कनेक्शन समझ में आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। यदि हम खा भी रहे हैं सो भी रहे हैं मैथुन भी कर रहे हैं, यदि हम अपनी रक्षा भी कर रहे हैं, तो उसके पीछे हितोपदेश कह रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी से करो, किससे करो रिस्पॉन्सिबिलिटी से करो। वही अंतर है हम में और जानवरों में। खाली खाना पीना सोना अच्छी तरीके से, जैसे यहां पर दिखाया गया है कि होटल में बैठ के खा रहा है कोई, कोई अच्छे तकिए लेकर सो रहा है, गद्दा लेके सो रहा है, कोई अच्छे से बहुत प्रशिक्षित तरीके से अपने आप की रक्षा कर रहा है या परिवार अपना बढ़ा रहा है, तो ये सब चीजें अगर हम निपुणता से करें बस उसी में हमारा पराक्रम नहीं है। आज के श्लोक के अनुसार और ये जो हितोपदेश का श्लोक उसके अनुसार जब तक हम जिम्मेदारी नहीं लेते हमारे ऐसे छोटे छोटे कर्मों की भी, तब तक हम स्वधर्म में स्थित नहीं है। इसलिए यहां पर जो पूछा गया इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ या सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ बिगिंस ओनली व्हेन वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी एक्शन विच वी परफॉर्म। व्हेन वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी एक्शन देन वी आर एंटाइटल्ड टू बिकम अ ह्यूमन बींग फर्स्ट, एंड दैट इज वॉट कृष्णा इज सेइंग श्रेयान स्वधर्मो, कि अर्जुन तुम रिस्पॉन्सिबल बनो। तुम्हारा जो प्रथम अध्याय में प्रस्ताव तुमने रखा है वो क्या प्रस्ताव था? स्वकर्म का। बस मुझे कर्म अच्छा नहीं लग रहा इसलिए मुझे नहीं करना, मुझे लड़ाई पसंद नहीं इस समय इसलिए मुझे लड़ाई नहीं करनी। दैट इज सिंपली स्वकर्म। बी सिचुएटेड इन स्वधर्म हे अर्जुन, दैट इज व्हाट इज द मैसेज टू बिगिन विथ इन टुडेज वर्स। तो अर्जुन के लिए अब स्वधर्म, यही भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन तुमने जो अपने पूरे जीवन भर ये जो गांडीव तुमने छोड़ दी है, ये उठा नहीं रहे, ये उठा नहीं पा रहे, और जो पूरे जीवन भर तुमने इस गांडीव को इस्तेमाल कर तुमने अपने स्वभाव के अनुसार कर्म किए, अब जो निर्णायक युद्ध आया है तुम्हारे जीवन में, निर्णायक युद्ध किसको कहते हैं? जैसे होता है ना यूनिट टेस्ट, टर्मिनल्स, प्रिलिम्स और फिर फाइनल एग्जाम। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि जो तुमने पहले जितने भी युद्ध लड़े होंगे ना वो सब तुम्हारे यूनिट टेस्ट इत्यादि सब थे। अरे अभी फाइनल टेस्ट, फाइनल एग्जाम है बोर्ड का, फाइनल एग्जाम, ये निर्णायक निर्णायक युद्ध है कि ये निर्णय देगा कि पूरी पृथ्वी पर कौन राज्य करेगा। ये युद्ध निर्णय देगा कि धर्म राज्य करेगा पांडवों के रूप में या अधर्म राज्य करेगा दुर्योधन के रूप में। और तुम केवल लगे हुए हो कि मेरा क्या होगा, मेरा, अरे पूरे विश्व के विषय में सोचो, तुम केवल अपना खुद का क्या होगा, खुद का क्या होगा। मैं यहां पर पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने आया हूं और ये युद्ध की प्रतीक्षा में मैं था। युद्ध की प्रतीक्षा में नहीं थे भगवान, भगवान किसकी प्रतीक्षा में थे? जिसके द्वारा धर्म की स्थापना हो। यदि शांति के द्वारा होता तो भगवान उसके पक्ष में थे। दुर्योधन को शांति पसंद नहीं थी, ले तो इसके द्वारा। तो भगवान अर्जुन को यही आज के श्लोक के द्वारा अर्जुन को यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि अर्जुन तुम इतना निश्चित रूप से श्रेय 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 के बारे में डंका बजाकर पूछ रहे थे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारा श्रेय तुम्हारे स्वकर्म में नहीं, तुम्हारे स्वधर्म में। और तुम्हारा स्वधर्म क्या है? जैसे तुम गांडीव को पहले उठाकर युद्ध किया करते थे अपने स्वभाव के अनुसार, वही स्वभाव, वही क्षत्रिय अर्जुन का स्वभाव इस्तेमाल करो आज मेरे आदेश के अनुसार। और जब तुम मेरे आदेश के अनुसार गांडीव उठाकर अपने स्वकर्म या स्वभाव के अनुसार कर्म करोगे तो तुम्हारा वो स्वकर्म नहीं स्वधर्म हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें निर्देश दे रहा हूं अर्जुन। तो अब आगे भगवान ने आज के श्लोक में श्रेयान स्वधर्मो विगुण, तो विगुण शब्द ये दो शब्दों से बना है। वी का अर्थ है दोषयुक्त और गुण का अर्थ है गुण वाला। तो विगुण का अर्थ हुआ दोषपूर्ण या दोषयुक्त गुण वाला। ये देखो इसके अंदर विरोधाभास दिखेगा आपको, दोष और गुण। तो गुण का अर्थ है क्वालिटी, ऐसे होता ना गुड क्वालिटी बैड क्वालिटी वैसे। तो विगुण क्या हो गया, बैड क्वालिटी, अवगुण जैसे बोलते हैं। तो भगवान इसके द्वारा क्या बताना चाह रहे हैं ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि अर्जुन ने प्रथम अध्याय में भगवान को इस युद्ध लड़ने के पीछे दो प्रमुख दोष बताए थे, या ये कहेंगे कि दो विगुण। कौन से दो दोष ये युद्ध लड़ने के, वो अर्जुन ने बताया। सबसे पहला विगुण, युद्ध राज्य तथा सुख के लोभ हेतु है। अर्जुन के अनुसार उन्होंने क्या कहा प्रथम अध्याय में कि ये जो मैं लड़ने जा रहा हूं ये तो मैं खुद के राज्य सुख लोभ के लिए, तो मुझे तो इसमें ये विगुणता दिख रही है, मुझे तो इसके अंदर ये दोष दिख रहा है, लोभ दिख रहा है मेरा, स्वयं मैं स्वार्थी हो रहा हूं। और दूसरा दोष अर्जुन ने बताया कि मैं युद्ध में इस राज्य और सुख के लोभ के पीछे किनको मारने के लिए उतारा हो रहा हूं, अपने ही स्वजन को। तो एक तो लोभ और दूसरा अपने ही स्वजनों की हत्या, ये दो दोष अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में देखे। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है कि भाई अर्जुन तो स्वाभाविक रूप से एक योद्धा थे, प्रोफेशनल वॉरियर, तो इस युद्ध के पहले अर्जुन ने कितने कितने युद्ध लड़े होंगे, क्या उसके अंदर अर्जुन ने कोई दोष नहीं देखा? उस समय गांडीव सरका नहीं हाथ से, उस समय कैसे वो युद्ध लड़ लिए, वो भी अकेले बिना कृष्ण के। तो हम इसमें देखेंगे कि अर्जुन द्वारा लड़े गए पूर्व के युद्ध, थोड़ा अर्जुन की हिस्ट्री जानते हैं हम कि अर्जुन ने इस युद्ध के पहले कौन कौन से युद्ध लड़े, और अर्जुन वो पूरा अपना रेज्यूमे भगवान के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि भाई ये देखो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड, मैंने जो इतने युद्ध लड़े हैं ना उसके अंदर बिल्कुल भी ये दोनों दोष नहीं थे। तो एक एक हम उदाहरण लेंगे अर्जुन के पूर्व युद्ध जो उन्होंने लड़े उसके अंदर जो दो दोष विगुण यहां पर अर्जुन बता रहे हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध के, वो ध्यान में रखना, भूलना मत उसको। तो सबसे पहला युद्ध अर्जुन बताते हैं भगवान को कि जब वो गुरुकुल से पास आउट हुए तो द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में अर्जुन से क्या मांगा, द्रुपद को जिंदा बंदी बनाकर मेरे सामने लाओ। हम जानते हैं महाभारत की कथा। तो अर्जुन गए, अर्जुन ने युद्ध किया द्रुपद और द्रुपद की पूरी सेना, अपने ससुर, ससुर है ना आगे चलकर ससुर बने, तो अपने ही ससुर के साथ उन्होंने युद्ध किया, पूरी सेना को परास्त किया। तो भगवान को बता रहे हैं कि वो जो मैंने युद्ध किया था वो मैंने खुद के लिए नहीं किया था, और उस समय वो मेरे ससुर नहीं थे तो स्वजनों को हत्या नहीं की थी मैंने, वो मैंने गुरु दक्षिणा के रूप में द्रोणाचार्य को, अपने गुरु को द्रुपद को जिंदा बंदी बनाकर लाया। तो वो याद दिला रहे हैं भगवान को। फिर निवात कवच नामक 8000 असुर ये देवताओं को पीड़ित कर रहे थे, तो इतने ये देवता पूरे हताश हो गए युद्ध करते करते ये निवात कवचों के साथ कि उनको कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि कैसे इनको परास्त करें। तो वो अर्जुन के पास गए, फिर अर्जुन से याचना की कि भाई बचाओ अकेले अर्जुन और ये 8000 निवात कवच। अर्जुन ने उनको परास्त किया। तो भगवान को अर्जुन बता रहे हैं कि वो निवात कवच 8000 जो थे वो मेरे स्वजन नहीं थे, और मैं क्यों वहां पर उनसे लड़ा, मेरे लिए नहीं, वो देवताओं का राज्य ठीक बरकरार रहे उनके लिए मैं लड़ा, चैरिटी था, चैरिटी अर्जुन की तरफ से चैरिटी मैच था वो। तो वो भगवान को याद दिला रहे हैं। फिर द्रौपदी स्वयंवर के समय, अब द्रौपदी स्वयंवर के समय अर्जुन तो केवल स्वयंवर के लिए गए थे और अर्जुन ने स्वयंवर जीत लिया, उसके बाद फिर वहां पर युद्ध हुआ। तो जब युद्ध हुआ तो युद्ध में वही द्रुपद जिनको उन्होंने बंदी बनाया था, वही द्रुपद के ऊपर ये सारे बाकी सारे जो राजा थे वो प्रहार करने के लिए तत्पर हुए। तो अपने ससुर को बचाने के लिए अर्जुन ने वो युद्ध किया, तो वापस से स्वयं के लिए नहीं, ससुर को बचाने के लिए। बहुत मुश्किल है आजकल भी ससुर को बचाना। तो द्रौपदी स्वयंवर के समय उन्होंने युद्ध लड़ा। फिर इंद्रप्रस्थ में, जब इंद्रप्रस्थ का राज्य उन्हें मिला, खांडवप्रस्थ जो था, तो उस समय कुछ लुटेरे आए और ये लुटेरे वहां पर ये कुछ गायों को हरण कर ले जा रहे थे। तो गायों की रक्षा करने के लिए अर्जुन ने इन लुटेरों के साथ युद्ध किया और इन्हें परास्त किया। तो ये भी बता रहे हैं कि मेरे लिए नहीं, आप जो गोपाल हो, गोविंद हो, आपकी गायों की रक्षा करने के लिए। तो अर्जुन ये उदाहरण दे रहे हैं। और फिर द्वैत वन में अज्ञातवास में दुर्योधन पहुंच गया पहचानने के लिए कि ये पांडव है कहां छिपे हुए, अज्ञात रूप में कहां छिपे हुए हैं। तो ये दुर्योधन द्वैत वन में पहुंच गया जहां पर इसको एंट्री नहीं थी, वो गंधर्वों का वन था, और वहां पहुंच गया। तो वहां पर जब बंदी बना लिया दुर्योधन को इन गंधर्वों ने ट्रेसपासिंग के लिए, तो युधिष्ठिर महाराज को समझ में आया, तो युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को भेजा कि जाओ और मदद करो दुर्योधन की। तो यहां पर अर्जुन ये उदाहरण दे रहे हैं कि द्वैत वन में उन गंधर्वों के साथ मैंने युद्ध किया दुर्योधन को बचाने के लिए। अब देखो, वही दुर्योधन जिसने अज्ञातवास में फेंका था हम सबको, उसको बचाने के लिए। तो ये सारे जो युद्ध मैंने लड़े हैं, आप जानते हो, इनमें ये दोनों विगुण नहीं है, दोनों दोष नहीं, परंतु ये जो आप मुझे लड़वा रहे हो कुरुक्षेत्र का युद्ध, इसके अंदर विगुण। तो भगवान अर्जुन के ये सारे पिछले युद्ध याद करते हुए और इस युद्ध में जो दो दोष अर्जुन देख रहे हैं उसको भी वो दुर्लक्ष नहीं कर रहे। भगवान कह रहे कि हां, तुम्हारे अनुसार अगर ये दो विगुण हैं, ये दो दोष हैं, फिर भी तुमको लड़ना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे हैं श्रेयान, उसके अंदर तुम्हारा श्रेय छिपा है, हालांकि विगुण है। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि इसके अंदर ये दो दोष नहीं है, भगवान कह रहे हैं ठीक है, ये दो दोष हैं, मैं भी मानता हूं, परंतु फिर भी तुमको तुम्हारा स्वधर्म करना है, लड़ो, तुम्हारा स्वधर्म इसके अंदर ही है, तुम्हारा श्रेय इसके अंदर ही है, चाहे इसके अंदर दो दोष हो, चाहे 20 हो, चाहे 20,000 दोष हो। बहुत पावरफुली भगवान बोल रहे हैं आज का श्लोक, हम लोग एकदम इत्मीनान से बैठ के सुन रहे होंगे, भगवान बहुत बड़ा वॉल्यूम करके बोल रहे हैं आज का श्लोक। तो अब जो अगली पंक्ति, अगली लाइन में भगवान ने कहा पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्, पर धर्म का अच्छी प्रकार से अनुष्ठान करना। तो अर्जुन का प्रस्ताव क्या था कि मैं ये गांडीव इधर रख दिया, अब मैं थोड़ा जाके कटोरा उठा के मैं भीख भी मांग लूं, मैं थोड़ा शांति का जीवन जीना चाहता हूं, मुझे खून खराबा नहीं चाहिए, ना तो उसको मेरे को मारना है, ना वो मुझे कोई मारे। ये ले चाबी, ले हस्तिनापुर के लिए भाई तू। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम यदि निपुणता से, तुम यदि अनुष्ठित भी हो जाओ परधर्म, परधर्म अर्जुन का क्या हो गया अब? भिक्षा मांगना, ये एकदम जो क्षत्रिय के विपरीत जितने लक्षण हैं उसको ना दे देना, बिना युद्ध किए दुर्योधन जो मांग रहा है ये ले, तू ये भी ले ले, वो भी ले ले, ये सब कुछ, ये क्षत्रिय के लक्षण नहीं, क्षत्रिय का लक्षण है तूने गलत किया है, सामने खड़ा हो, तेरे को मैं अभी सबक सिखाता हूं, ये क्षत्रिय की भाषा होती है। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्, अर्जुन तुम बहुत स्वनुष्ठित हो रहे हो पर धर्म में। तो इसके कुछ उदाहरण हम लेते हैं पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् के। सबसे पहला उदाहरण है कर्ण का। तो कर्ण बहुत ही स्वनुष्ठित था अपनी दोस्ती में। उसकी दोस्ती किसके प्रति? दुर्योधन के प्रति। कि ऐसी दोस्ती, ऐसा याराना मेरा और दुर्योधन का। भगवान गए कर्ण को कहे कि अरे भाई तुम ज्येष्ठ पांडव हो, सबसे ज्येष्ठ तुम हो, तुम युधिष्ठिर के भी ज्येष्ठ हो, अरे तुम्हें हस्तिनापुर का ये क्या, तुम वो कौन सा अंगराज, तुम अंगराज अंग देश के राजा बन के बैठे हो, अरे तुमको हस्तिनापुर का राज्य मिलेगा। तो कर्ण वो अपने सिद्धांत लेकर सामने भगवान को दिखाता है, मैं अपनी दोस्ती निभाऊंगा। तो ये है पर धर्मा स्वनुष्ठित था, बहुत स्वनुष्ठित था, लेकिन किसमें था? अरे ठीक है तुम्हारी दोस्ती, लेकिन किसके प्रति तुम दोस्ती रख रहे हो वो तो देखो, वो मतलब नहीं है, वो निकम्मा वो कुछ भी होगा, लेकिन मैं उसका दोस्त हूं। इसको बोलते हैं मिथ्या अहंकार, कि वो गया गुजरा हो गया लेकिन मैं उसका दोस्त हूं। अरे तो तुम गए गुजरे के अगर दोस्त बन रहे हो तो तुम भी गुजर जाओगे। तो कर्ण का उदाहरण है कि कर्ण की जो तथा कथित दोस्ती थी उसका कोई बेसिस नहीं था, उसका धार्मिक बेसिस कुछ नहीं था, वो बहुत ही कृत्रिम सुपरफिशियल या भौतिक स्तर पर वो सब कुछ था। फिर उदाहरण द्रोणाचार्य का और कृपाचार्य कि ये भी किसमें अनुष्ठित रहे? दुर्योधन, क्योंकि दुर्योधन जो भी दाना पानी डाल रहा था, इनका मेंटेनेंस कर रहा था दुर्योधन, तो क्योंकि दुर्योधन इनका मेंटेनेंस कर रहा था इसलिए ये ऋणी हो गए उनके, जबकि ब्राह्मणों को बिल्कुल इस प्रकार का ऋण अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए किसी का भी। करे वहां पर दक्षिणा ज्यादा मिल रही है तो चलो वहां पर थोड़े मंत्र ज्यादा बोलते हैं। इसको बोलते हैं पर धर्मा स्वनुष्ठिता और भयावह, आगे भयावह होता है, वह है वही द्रोणाचार्य और कृपाचार्य। कि हालांकि वो आचार्य थे, हालांकि वो गुरु थे इनके, लेकिन भगवान ने कहा कि वो कहां पर किसकी चाकरी कर रहे हो देखो, उन्होंने तुम्हें धनुर्विद्या सिखाई होगी अर्जुन, परंतु वो किसकी चाकरी कर रहे हैं देखो। अरे यदि द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन थे तो युद्ध के लिए सामने अर्जुन के क्यों खड़े होके प्रतिद्वंद्वी बने वो? तो इसको कहते हैं पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्। और रामायण से उदाहरण है मारीच का। अब देखो मारीच के पास जब रावण गया तो रावण ने मारीच को क्या कहा कि भाई देखो मुझे तो वो सीता का अपहरण करना है और ये तरीके से तुम्हें मेरी मदद करनी। तो मारीच को जब समझा कि अरे तो रामचंद्र जी की जो पत्नी है उनका अपहरण करने के लिए जा रहा है, तो मारीच ने तो पहले रावण को भेजा है, मेरे को एक बार लात मारी थी वो विश्वामित्र मुनि के यज्ञ में 800 मील जाके मैं दूर गिरा था। नहीं नहीं, उनसे पंगा मत लेना, मैं भी बता रहा हूं तुमको। उसने वार्न भी किया था रावण को। रावण ने बोला या तो वहां मर या मेरे हाथ मर, मरना तो तेरा निश्चित, तेरा एक्सपायरी डेट तो निश्चितम, तू डिसाइड कर कि तेरे को किसके हाथ मरना है। तो अब देखो, मारीच ने जब ये देख लिया कि मुझे ये न कि न प्रकार ने मरना तो है ही, रावण या राम, तो उसने बहुत ड्यूटीफुली सेवा की, लेकिन किसकी की? रावण की सेवा की। जैसे रावण ने बताया था, स्वर्ण हिरण बन गया, स्वर्ण का हिरण बन के घूम रहा है, और फिर वो चिल्लाया लक्ष्मण सीते, इस प्रकार से लक्ष्मण की आवाज में एकदम, उसने जो रामचंद्र जी की आवाज में लक्ष्मण को पुकारा तो सीता भी भ्रमित हो गई कि अरे तो मेरे रामचंद्र जी की आवाज है। तो बहुत ही निपुणता से मारीच ने सेवा की, लेकिन किसकी की? रावण की। जैसे कर्ण, जैसे द्रोणाचार्य, जैसे कृपाचार्य, सुनुष्ठित रहे लेकिन निपुणता से, लेकिन निपुणता से किया उन्होंने, लेकिन किसके बैनर के अंडर? अधर्म के बैनर के अंडर। तो यही भगवान कह रहे हैं, पर धर्मा सुनुष्ठिता, वहां से भयावह स्थिति प्रारंभ होती। अब ये जो उदाहरण हमने लिए, तो इसके संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, जिसका बहुत ही मैच्योर्ड अंडरस्टैंडिंग हमें होना चाहिए जब हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं या हम अपना निजी जीवन भी यापन करते हैं। तो यहां पर है आपके सामने एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव ट्रुथ। तो एक है रिलेटिव लाय विद इन एब्सोल्यूट ट्रुथ। थोड़ा ध्यान से कि एक है परम सत्य। मान लो कि एक मैं सर्कल निकालूं परम सत्य का, तो परम सत्य एक है और परम सत्य के उस सर्कल के अंदर एक सापेक्ष झूठ है या रिलेटिव लाय। और दूसरा एक्सट्रीम है रिलेटिव ट्रुथ विद इन एब्सोल्यूट लाय, कि सर्कल है एब्सोल्यूट लाय का और उसके बीच में सापेक्ष सत्य है। मैं आपको समझाऊंगा, घबराइए मत। जैसे उदाहरण आता है एक ऋषि का, कौशिक ऋषि करके। तो ये कौशिक ऋषि, इन्होंने अपने जीवन में एक प्रण लिया था कि ये कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तो एक बार हुआ ऐसा कि अपने आश्रम में बैठे हुए तो कुछ कसाई गायों को मारने के लिए, गायों की हत्या करने के लिए गायों के पीछे भाग रहे थे। गाय भाग रही थी बेचारी कसाईयों से डर कर। तो ये गाय, कुछ गाय भागती हुई कौशिक ऋषि के आश्रम में शरण लिए। तो कसाई पहुंचे तो कसाईयों ने कौशिक ऋषि से पूछा, गाय आई यहां पर? तब कौशिक ऋषि ने अपने जीवन का वो आदर्श जो उन्होंने प्रस्थापित किया था कि मैं कभी आज तक झूठ नहीं बोला हूं, तो मैं कैसे झूठ बोलूं? तो कौशिक ऋषि ने सच बोला। यहां पर है ये, वो कसाई गए, उन्होंने गायों की हत्या कर दी। तो गायों की हत्या होगी, कौशिक ऋषि ने अपना झंडा ऊपर बरकरार रखा। कौन सा झंडा? सत्यवादी होने का। इसको बोलते हैं रिलेटिव ट्रुथ विद इन एब्सोल्यूट लाय। और कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि महाभारत में भगवान ने युधिष्ठिर महाराज से झूठ क्यों बुलवाया? युद्ध के नीतियों के विरुद्ध कर्ण को क्यों मरवाया, वो सब क्या था? वो सब रिलेटिव लाए विद इन एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो हम देखते हैं इस भौतिक संसार में बहुत से वो कैटेगरी के आपको मिलेंगे, एकदम आदर्शवादी, सत्यवादी हरिश्चंद्र, प्रिंसिपल्ड। परंतु यदि उनका जीवन आप देखो कि एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर क्या जीवन जी रहे हो, तो कोई भगवान नहीं, मैं ही सब कुछ हूं, या एकदम भौतिक स्तर पर जीवन जी रहे हैं, तो वो क्या है? इट इज जस्ट अ रिलेटिव स्मॉल ट्रुथ विद इन देयर एंटायर लाइफ विच इज एन एब्सोल्यूट लाई। तो भगवान, ये सारे जो उदाहरण हमने लिए, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, मारीच, ये सब क्या था? दे वर वेरी ड्यूटीफुल। कर्ण वॉज वेरी ड्यूटीफुल, यू नो, इन रिगार्ड्स टू हिज लॉयल्टी टुवर्ड्स दुर्योधन, कि दुर्योधन के प्रति जो मेरी निष्ठा, मेरी लॉयल्टी। अरे भाई, व्हाट इज दुर्योधन? फर्स्ट ऑफ ऑल, ही इज अ ब्लडी एब्सोल्यूट लाय, सॉरी, और उसके प्रति तुम, तुम्हारा लॉयल्टी दिखा रहे हो, ये वो तुम्हारे लेक्चर झाड़ रहे हो कि मैं कितना निष्ठावान हूं, ये दोस्ती हमारी कभी टूटेगी नहीं। सो इट्स ऑल जस्ट हम्बक, इंग्लिश में बोलते। तो ये समझना बहुत आवश्यक है। आज के श्लोक के द्वारा भगवान ये बता रहे हैं, अर्जुन, डोंट गेट कॉड अप इन द रिलेटिविटी ऑफ ट्रुथ एंड लाई। अंडरस्टैंड द एब्सोल्यूट ट्रुथ। इफ यू अंडरस्टैंड द एब्सोल्यूट ट्रुथ, वॉट एवर यू डू फॉर दैट इज एब्सोल्यूट। एंड इफ योर एब्सोल्यूट लाई इज द बेसिस ऑफ योर लाइफ, देन वॉट एवर यू डू, तुम्हारा आदर्श, तुम्हारी नैतिकता, तुम्हारी सत्यवादिता, तुम्हारी करुणा, ये सब कुछ भंगार, भंगार माल है, किसी काम का नहीं। इसलिए जो लोग ये बड़े बड़े भाषण देते हैं आदर्श के, यदि उनका पूरा जीवन एक असत्य के आधार पर जी रहे हैं, यदि भगवान परम सत्य के आधार पर जीवन नहीं जिया जा रहा, सो इट इज ऑफ नो वैल्यू। ये भगवान बता, उल्टा भगवान बोल रहे भयावह है, नो वैल्यू नहीं, वो भयानक है, वो डेंजरस है वो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण समझने के लिए ये स्लाइड मैंने इंक्लूड किया था उसके संदर्भ में। अब आगे भगवान बोल रहे हैं एक बहुत सुंदर लाइन, तीसरी लाइन आज के श्लोक की, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। भगवान ये बोल रहे हैं कि यदि तुम अपने स्वधर्म को पालन करते करते यदि मर भी जाओ, निधन हो जाए अर्जुन तुम्हारा, क्या वर्स्ट कम वर्स्ट होगा? क्या मरोगे युद्ध में? क्या सबसे जो डेंजरस कुछ यदि हो सकता है तो क्या मरना किसी के भी जीवन में? परंतु वो भी तुम्हारे लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा अर्जुन, यदि तुम अपने स्वधर्म को करते हुए मरोगे, और यदि भिक्षा मांगते हुए हार्ट अटैक आ गया तुमको, तो तुम नहीं यहीं के रहोगे ना वहीं के रहोगे। तो मरना तो तुमको है, चाहे भिक्षा मांगते हुए मरो एक दिन, या युद्ध करते हुए मरो। तुम्हारे लिए श्रेयस्कर क्या है ये मैं बता रहा हूं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है आज के श्लोक की, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। तो संस्कृत का एक बहुत प्रसिद्ध ये फ्रेज है, आप लोगों ने सुना भी होगा, धर्मो रक्षति रक्षितः। कितनों ने सुना है संस्कृत का ये फ्रेज, धर्मो रक्षति रक्षितः। तो ये आज के श्लोक से बना हुआ है ये फ्रेज, जो नीति शास्त्र का है। और इसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ साधारणतः यह बताया जाता है कि यदि आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। वही भगवान बता रहे हैं, अपने स्वधर्म की रक्षा करने से स्वधर्म अपनी रक्षा करता है। तो ये जो फेमस नीति का फ्रेज है वो भगवान आज के श्लोक के द्वारा या भगवान के श्लोक पर आधारित वो नीति का फ्रेज है। धर्मो रक्षित रक्षति रक्षित, अपने स्वधर्म की रक्षा करने से स्वधर्म अपनी रक्षा करता है। तो अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं। स्वधर्मे निधनम श्रेय, कि अपना स्वधर्म करते समय जब किसी का निधन हुआ तो उसको श्रेय कैसे प्राप्त हुआ। सबसे पहला उदाहरण जटायु। जटायु इनका निधन हुआ परंतु इन्होंने अपना स्वधर्म पूरा किया। वो जानते थे कि रावण को परास्त नहीं कर पाएंगे, वो जानते थे कि उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं, रावण बहुत शक्तिशाली है और वो वृद्ध हो चुके थे, अकेले एक पक्षी, परंतु उन्होंने अपना स्वधर्म पूरा किया कि नहीं, मुझे, मैं अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा किसी को भी, रामचंद्र जी तो छोड़ दीजिए, यदि मैं मेरे आंखों के सामने सीता मैया का अपहरण देखता रह गया और कुछ नहीं किया मैंने। तो यहां पर जटायु का उदाहरण है कि जटायु अपना स्वधर्म पालन करते समय वो असफल रहे। ही वॉज अ फेलियर एक्सटर्नली, परंतु श्रेय उनको क्या मिला? उनको जो श्रेय मिला वो दशरथ महाराज को भी नहीं मिला। कौन सा श्रेय? दशरथ महाराज जो कि रामचंद्र जी के पिता, जब उनका निधन हुआ तो शास्त्र के अनुसार जो पुत्र होता है ज्येष्ठ वो चिता में आग लगाता है, वो अंतिम संस्कार करता है। सोचिए रामचंद्र जी के हाथ से अंतिम संस्कार हो किसी का, इससे सौभाग्य की बात क्या हो सकती है? और रामचंद्र जी ने अपने हाथों से जटायु का अंतिम संस्कार किया, तो इससे ज्यादा। और क्यों किया? क्योंकि जटायु ने अपना स्वधर्म, भगवान ने ही नहीं देखा कि वो सफल रहे कि असफल रहे, भगवान ने ही देखा कि जटायु ने अपना स्वधर्म किया। तो ये उदाहरण है स्वधर्मे निधनम श्रेय। अभिमन्यु का उदाहरण है महाभारत में, कि अभिमन्यु 16 वर्ष के केवल, उन्होंने जब देखा कि चक्रव्यूह जो लगाया हुआ है कौरवों ने और कोई नहीं था उस चक्रव्यूह को भेदने के लिए, तो अभिमन्यु जानते थे कि मैं चक्रव्यूह से बाहर नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे इसका ज्ञान नहीं मिला, मुझे केवल चक्रव्यूह भेदने का ज्ञान मिला हुआ है, चक्रव्यूह से वापस आने का ज्ञान मेरे पास नहीं है। अभिमन्यु जानते थे, केवल अकेले 16 वर्ष के वो गए अंदर, अपना स्वधर्म पूरा किया, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और उन्हें जो ख्याति मिली अभिमन्यु को, वो जो 6 बाकी योद्धा थे जिन्होंने घेर कर अभिमन्यु को मारा जो सफल रहे, उनको क्या मिली? उनको कुख्याति मिली, दे गॉट इन्फमी। एंड अभिमन्यु इवन दो वॉज अ फेलियर बट ही बिकेम ग्लोरियस बिकॉज ऑफ परफॉर्मिंग हिज स्वधर्म। भीष्म पितामह जो इतने बड़े स्वयं एक धनुर्धर, परंतु अर्जुन के हाथ और बाणों की शैया पर लेटे हुए, जिनके बलबूते पर दुर्योधन इत्यादि सभी जोर जोर से ललकार रहे थे, वही भीष्म पितामह वो 10वें दिन बाणों की शैया पर लेट गए। जैसे होता है ना, कई लोग, कोई टॉप सीड होता है किसी गेम का, अगर वो सेकेंड राउंड में ही बाहर आ जाए या क्वार्टर फाइनल में हार जाए, तो भीष्म पितामह जो धनुर्धरों में टॉप सीड थे वो 10th डे ही बाहर आ गए। तो एक्सटर्नली क्या? निधनम, हालांकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था बाणों की शैया पर, और अर्जुन ने ऐसा प्रदर्शन किया था सबके सामने कि देखो ये मेरे पितामह, ये मुझसे भी ज्यादा बड़े धनुर्धर और मैं इनकी क्या हालत किया हूं कि इतने बाण इनके शरीर में मैंने भेद दिए हैं कि दो बाणों के बीच में एक उंगली न जा सके, इतनी भी जगह मैंने नहीं छोड़ी। और 8 दिन ऐसे भीष्म पितामह वहां पर सबके सामने लेटे रहे, तो निधन से भी ज्यादा अपमानजनक था किसी योद्धा के लिए, परंतु भीष्म पितामह के लिए वो अर्जुन के द्वारा मारे गए बाण भीष्म पितामह के लिए अपमानजनक नहीं थे, बल्कि भीष्म पितामह के लिए वो बाण श्रेय, वो उनका श्रेय बढ़ा रहे थे। क्यों? क्योंकि मैंने अपना स्वधर्म पूरा किया, और मेरा स्वधर्म क्या था कि मैं हस्तिनापुर की जो गद्दी है, मैं हस्तिनापुर के लिए विश्वासु रहा। तो यहां पर भीष्म पितामह का उदाहरण है। और गर्ग संहिता में एक उदाहरण आता है यादवों का, जब यादव बलवल नामक असुर और उनके सैनिकों के साथ युद्ध कर रहे थे, तो पांचजन्य उपद्वीप में ये युद्ध चल रहा था। और गर्ग संहिता में इसका वर्णन है कि जब ये युद्ध चल रहा था तो जितने सैनिक, चाहे यादवों की ओर से या ये बलवल असुर की ओर से, जो उस युद्ध भूमि में मर रहे थे, सब की सदगति हो रही थी। गर्ग संहिता में मेंशन है कि कुछ योद्धा जो बलवल असुर के पक्ष के थे, सेना के थे, तो वो मरते समय, क्योंकि क्षत्रिय थे, तो मरते समय उनकी इच्छा स्वर्ग की इच्छा थी, तो बहुत सी अप्सराएं वो पहले से ही, हाँ ये मेरे लिए पहले से ही मैच फिक्सिंग हो रहा था। और जो यादवों के साइड के कुछ सैनिक जो कि शुद्ध भाव से लड़ रहे थे, वो डायरेक्टली वैकुंठ जा रहे थे, तो दोनों स्थितियों में उनको श्रेय मिल रहा था, एक को भौतिक मिल रहा था, एक को आध्यात्मिक मिल रहा था। मरते हुए एक एक करके मर रहे हैं और उनको उनको हायर पोस्ट मिल रहा है। तो ये उदाहरण गर्ग संहिता में है कि स्वधर्मे निधनम श्रेय, उनको श्रेय चाहे भौतिक या आध्यात्मिक क्यों मिला, क्योंकि अपने स्वधर्म का पालन किया। तो स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने स्वधर्म में जो विगुण अर्थात अवगुण दिखाई पड़ता है वह वास्तव में गुण है, ये भगवान बोल रहे हैं। तो दोनों लाइन को साथ में समझना होगा हमें। पहली लाइन में भगवान ने क्या कहा, श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मा स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेय। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि निधन यदि हो गया तो उसके अंदर तो देख, अरे दोष हो गया ना, ये तो मर गया, ये तो असफल रहा। कलयुग में भौतिक संसार में लोग किसी को सफल या किसी को श्रेयस्कर कैसे मानते हैं, अरे वो सक्सेसफुल है, उसके पास अच्छी नौकरी है, पैसा है, ये है, सब कुछ है, उसको सफल मानते हो। लेकिन यहां पर सफलता और असफलता की परिभाषा भगवान ने एकदम रेवोल्यूशनरी सुनाई है कि तुम ये ना इसके पीछे मत जाओ कि तुम जिंदा रहोगे या मरोगे या तुम जीतोगे या हारोगे, मैं तुम्हें तुम्हारे स्वधर्म के बारे में बता रहा हूं। एज दे से दैट मैन सीज द रिजल्ट, गॉड सीज द एफर्ट। Man sees the lips, God sees the heart. तो वो है यहां पर, अपने स्वधर्म में जो विगुण अर्थात अवगुण दिखाई पड़ता है वह वास्तव में गुण ही है। तो चाणक्य पंडित का बहुत सुंदर श्लोक है इसके संदर्भ में कि कैसे बाहरी रूप से अगर किसी में कुछ दोष दिखते हैं परंतु यदि वो अपने स्वधर्म का पालन करें तो दोष के परे वो सुंदर दिखते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण चाणक्य पंडित देते हैं कि कोयल, कोयल काला होता है, एकदम ऐसा, इतने ऐसे लगता है कि कोयले के अंदर ना क्या है, ना काला। लेकिन काले कोयल की सुंदरता चाणक्य पंडित कहते हैं किसमें दिखती है, वो अपना स्वधर्म पूरा करता है। कौन सा? उसकी मीठी वाणी, वो उसका स्वधर्म है। अगर कोयल मोर की तरह नाचने लगे तो क्या है, पर धर्म भयावह। क्योंकि वो मोर की तरह सुंदर दिखता नहीं है। आप देखो यहां पर भी कोयल सुबह सुबह बोलते हैं, कोयल कभी दिखाई नहीं देंगे ज्यादा आसानी से, कहां से आवाज आती समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि दिखने में कुरूप है, लेकिन उनकी सुंदरता सभी कैसे उनका गुणगान करते हैं, कोकिल कंठी बोलते हैं ना, कोकिल कंठी। ऐसे नहीं बोलते हैं कि अरे तुम्हारा चेहरा कैसे कोयल की तरह है। तो एक है कौवा और एक है कोयल, दोनों काले, लेकिन कोयल का गुणगान, कोयल की तुलना क्यों की जाती है किसी के भी कंठ से, क्योंकि वो उसकी सुन, वो उसका स्वधर्म है। तो ध्यान में रखना, यहां पर चाणक्य पंडित कहते हैं कि यदि उसके अंदर दोष भी है तो वो अपने स्वधर्म का जब पालन करता है तो उसमें सुंदरता दिखती है। दूसरा उदाहरण, यदि कोई स्त्री कुरूप है, दिखने में सुंदर नहीं, शरीर बेढंगा है, जो भी कुछ, परंतु यदि उसके अंदर सतित्व है, चैस्टिटी, वो उस स्त्री की सुंदरता है। और आजकल देखो बहुत सुंदर स्त्रियां घूम रही हैं बाहर से, परंतु पूछो सतित्व कितना है। उल्टा आजकल तो जितना सतित्व गिरा हुआ हो उतना उनका गुणगान होता है, ये है कलयुग। लेकिन चाणक्य पंडित कहते हैं कि एक कुरूप स्त्री भी हो, उसकी सुंदरता उसके सतित्व में दिखती है, उसका स्वधर्म वो है। फिर यदि ब्राह्मण बाहरी रूप से कमजोर क्यों ना हो, एकदम पतला कागदी पहलवान, तो कमजोर भी क्यों ना हो, परंतु उसकी जो सुंदरता है वो किसमें है, सहनशीलता में है। और सहनशीलता के वजह से ब्राह्मण जो हैं वो शक्तिशाली वो माने जाते हैं। और बहुत से उदाहरण हैं, जैसे कि शमिक ऋषि, परीक्षित महाराज ने शमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, परंतु शमिक ऋषि ने उसको सहन किया। जैसे वो कहानी है, एक ब्राह्मण नदी के तट पर वो ध्यान में बैठा हुआ था, तो ब्राह्मण ने एक बिच्छू को देखा, वो नदी का जो तट था वो पानी से बिच्छू बाहर आने का प्रयास कर रहा था, परंतु लहरों की वजह से बिच्छू वापस अंदर जा रहा। तो ब्राह्मण गया अपने दोनों हथेली से बिच्छू को बाहर निकालने के लिए, तो बिच्छू डंक मार, जितनी बार वो ब्राह्मण बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है बिच्छू डंक मार। तो एक व्यक्ति देख रहा था, उसने कहा अरे आपको समझ में नहीं आता, वो बिच्छू है वो तो डंक मार रहा है, क्यों फालतू में उसकी मदद कर रहे हो। तो ब्राह्मण ने कहा कि उसका स्वभाव, उसका स्वधर्म वो कर रहा है पालन। उसका स्वधर्म क्या है, डंक मारना। बिच्छू वो कोई गीत नहीं सुनाएगा मेरे को वहां बैठ के, वो अपना स्वधर्म का पालन कर रहा है। तो यदि एक नगण्य जानवर वो अपने स्वधर्म को नहीं छोड़ रहा, तो मैं एक ब्राह्मण अपने स्वधर्म को क्यों छोड़ू। इफ अ सिली इनसिग्निफिकेंट एनिमल इंसेक्ट इज नॉट गिविंग अप इट्स नेचर, वाई शुड आई गिव अप माई नेचर ऑफ हेल्पिंग। तो ये चाणक्य पंडित कहते हैं कि यदि बाहर से कमजोर क्यों ना हो, हिंसक क्षत्रिय, यदि क्षत्रिय हिंसक, क्षत्रिय का क्या स्वधर्म बताया गया है, शूरवीरता, हिंसा, ये सब कुछ, वायलेंस, परंतु वो यदि धर्म परायण हो, उसकी जितनी शूरवीरता, जितनी हिंसा वो कर रहा है, परंतु धर्म के आधार पर वो कर रहा है, तो वो क्षत्रिय की शूरवीरता है। जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले बंबई था, तो एक कार्यक्रम मैंने किया बंबई में एक किसी के घर में, तो एक व्यक्ति मुझे प्रश्न पूछ रहे थे कि इसी के संदर्भ में कि व्हाट इज मोरालिटी, व्हाट इज इमोरालिटी, व्हाट इज ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी इत्यादि। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आजकल आप सुने हैं कि राहुल गांधी वो दलितों के घर जाकर खाना खा रहे हैं। तो मैंने कहा कि राजा का काम दलितों के घर पर जाकर खाना खाना नहीं है, राजा का काम यह है कि वो इसमें दिमाग लगाए कि दलित कैसे उसका खाना खाए रोज। समझ में आया? तो एक दिन जाकर किसी दलित के घर में खा लिया और अब मुझे वोट दो। अरे भाई, उससे उसका क्या भला हो रहा है? तुमको तो गद्दी मिल गई, तुम्हारा तो खाना चल रहा है 5 स्टार में। तो यदि कोई क्षत्रिय है तो उसका जो स्वधर्म है वो उसे जानना बहुत जरूरी है कि क्या वो धर्म परायण है कि नहीं। जैसे कि चाणक्य पंडित, वो ब्राह्मण थे परंतु क्षत्रिय राजा को कैसे राज्य करना है, राज्य की नीति इत्यादि वो धर्म के आधार पर बताते थे। फिर लोभी वैश्य क्यों ना हो। वैश्य यदि लोभी नहीं तो पैसा नहीं कमा सकता, परंतु वैश्य के जितने लक्षण बताए गए हैं उसके अंदर उसकी सुंदरता कहां बताई गई है, गोरक्षा, कि जब वो गोरक्षा में, गायों की रक्षा में जो भी कुछ मुनाफा उसका होता है उसके अंदर वो कुछ भाग देता है, तो वहां पर वो अपने स्वधर्म का पालन कर रहा है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण, वो भी एक वैश्य परिवार में, तो उन्होंने कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम इत्यादि ये स्वधर्म का पालन किया। और एक शूद्र यदि बाहरी रूप से यदि अशुद्ध भी क्यों ना हो, परंतु यदि उसके अंदर आज्ञाकारिता का गुण है, तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि वो उसका स्वधर्म है, वो उसकी सुंदरता है। तो ये सारे उदाहरणों से चाणक्य पंडित क्या बता रहे हैं आज के श्लोक में, जो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि यदि स्वधर्मे निधनम श्रेय, यदि बाहरी रूप से उसके अंदर दोष भी दिखे, निधन भी हो जाए, तो श्रेयस्कर है। अब जो अंतिम पंक्ति, पर धर्मो भयावह, इसके विपरीत यदि कोई पर धर्म में लगा हुआ है, और हम देखते हैं कि विशेष रूप से कलयुग में जहां पर जिसको नहीं जाना है वहां पर अपनी नाक अड़ा रहा है, उसको बोलते हैं पर धर्म भयावह, और उसके वजह से भयानक परिणाम आ रहे हैं। तो इसके संदर्भ में आज आपको हम एक वीडियो दिखाएंगे, और लाइट्स बंद कर सकते हैं। इस वीडियो में यह बताया जा रहा है कि कोई जब दूसरे के ऑक्यूपेशन को साथ अपने ऊपर ले लेता है तो भयावह परिणाम क्या होते हैं उसके, फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, आप समझ जाएंगे वीडियो के द्वारा कि ये परधर्म भयावह क्या है।
grab me a sip and just a look.
Yes, it's fine.
Great. Right. Your mind up yet, sir? Susie, answer that, will you please, love? Excuse us a minute, will you? Susie!
Haircut, will you? Be good, Jamie. It's a terrible mess.
Hold it, I can't hear you. Wait a minute. Hi.
Oh, sorry about that. Susie's usually here Tuesdays. 2 minutes.
Morning, Derek.
Good morning.
Usual, please, Derek.
I was first.
Oh, this is...
Just these split ends at the back and thin it out, would you?
What a day.
Thanks, Derek.
Very nice.
Roger. Roger!
Right, where is he?
Whoa.
Where is he?
What on earth
do you call this? You don't like it.
I do.
Shut up, Jamie. Now look, listen to me.
Where's my ponytail?
My son looks like an angel.
Look, shut up.
Excuse me.
Have you got any idea how long it took me to grow that?
No, I'm nearly 2.5 years. And your mother dropped it off in less than 2 minutes.
Have
you seen him?
Let me see. Sir.
Yes,
I'm
mad. Right, now, what are you going to do?
Your assistant. Where is he?
Oh, no, no, no. Derek, whatever your name is.
आपको समझ गया होगा कि गीतामृत चल रहा है भाई देवे कि जो भगवान बोल रहे हैं पर धर्मो भयावह, कि दूसरे का धर्म करने से भयावह परिणाम जो हमने देखे इस वीडियो में। तो भगवान अर्जुन को यही बोल रहे हैं कि नाई का काम नाई को करने दो, तुम्हारा काम है युद्ध लड़ना और तुम वही करो। यदि तुम युद्ध लड़ना छोड़कर जो कुछ तुम अपना प्रस्ताव रख रहे हो करने जाओगे तो उसके परिणाम भयावह होंगे। तो कुछ उदाहरण फिर से हम लेंगे। कर्ण, आज उनके उदाहरण बहुत से आ रहे हैं। तो कर्ण पर धर्म के द्वारा कैसे भय की प्राप्ति उनको हुई, तो हमने हमारे पिछले सेटिंग में एक बार लिया था कि कर्ण परशुराम जी के पास गए और उन्होंने झूठ कहा कि वो ब्राह्मण है, और झूठ बोलकर वो ब्रह्मास्त्र की विद्या सीख लिए। और फिर वो घटना हुई कि जब परशुराम जी वो लेटे हुए थे और उनका सर कर्ण के गोद में था, तो भंवरा जब कर्ण को डसने लगा, काटने लगा, रक्त बहने लगा, उसके पश्चात भी कर्ण वो टस से मस नहीं हिले। और परशुराम जी जब जगे, उन्होंने देखा कि शारीरिक इतनी सहनशीलता केवल एक क्षत्रिय में हो सकती। और फिर जब कर्ण का पर्दाफाश हुआ तो परशुराम जी ने कर्ण को श्राप दिया कि जो ब्रह्मास्त्र मैंने तुमको सिखाया है, उस ब्रह्मास्त्र की विद्या जब सबसे ज्यादा उसकी आवश्यकता तुमको पड़ेगी तुम भूल जाओगे उसे। तो ये कर्ण जब पर धर्म करने के लिए गए तो भयावह स्थिति की प्राप्ति उनको हुई। श्रीमद् भागवत में एक और राजा का उदाहरण है, कार्तवीर अर्जुन। ये राजा एक बार भ्रमण करते हुए वो जमदग्नि एक ब्राह्मण थे उनके आश्रम पहुंचे, और उनके राजा के पूरी उनकी पलतून थी उनके साथ। तो जमदग्नि एक विरक्त ब्राह्मण, उनके पास एक सुरभि गाय थी, और ये कामधेनु सुरभि गाय से जमदग्नि ने न केवल वो राजा बल्कि जितने सैकड़ों उसके सैनिक, पूरी सेना की ऐसी खातिरदारी की, कुछ मिनटों में वो सुरभि कामधेनु गाय ने सब कुछ ऐसे व्यंजन प्रस्तुत कर दिए इनके लिए। और राजा ये कार्तवीर अर्जुन ने जब ये देखा तो उसे शर्म आ गई कि मैं एक राजा हूं और मैं दो मिनट में यदि कोई इतने अतिथि मेरे पास आ जाए तो मैं नहीं खिला सकता उनको इतना जितना कि ये जंगल में रहता हुआ ये जमदग्नि ये ब्राह्मण खिला दिया। तो कार्तवीर अर्जुन ने किया क्या कि वो गाय को चुरा लिया। अब जो क्षत्रिय जिसको ब्राह्मणों की रक्षा करनी चाहिए, गायों की रक्षा करनी चाहिए, उसने अपने स्वधर्म के विरुद्ध कार्य किया, और पर धर्म कि उसका कार्य ये नहीं था कि वो गाय को चुराना बल्कि उस जमदग्नि की देखरेख करना, वो ब्राह्मण की देखरेख करना, उसके विपरीत उसने कार्य किया। उसके पश्चात फिर परशुराम जी जो जमदग्नि के पुत्र वो उन्होंने कार्तवीर अर्जुन और पूरी सेना को परास्त कर उनका वध किया। तो ये पर धर्म भयावह का एक और उदाहरण। अब चाणूर मुष्टिक के विषय में हम श्रीमद् भागवत में कृष्ण लीला में सुने हैं, तो इनका इतिहास ये बताता है कि चाणूर और उसके और चार भाई, ये पांच थे मिलके, पांच मल्ल थे ये कंस के वो मल्ल युद्ध में। तो ये स्वर्ग में एक ब्राह्मण के पिछले जन्म में ये एक ब्राह्मण के पुत्र थे पांच। ये ब्राह्मण का नाम था उतथत्थ्य, और ये ब्राह्मण के ये पांच पुत्र ब्राह्मण का कार्य छोड़कर ये केवल मल्ल युद्ध किया करते थे, अपना स्वधर्म छोड़कर यही किया करते थे, और गलत संगति में गिरे हुए। तब फिर इनको शाप मिला इनके ही पिता के द्वारा कि तुम पृथ्वी पर नीचे जन्म लो और तुम एक मल्ल के रूप में, एक रेसलर के रूप में जन्म लो। तो फिर वो कंस के वो राज्य में वो चाणूर और बाकी जो पांच उसके भाई वो मल्ल के रेसलर के रूप में वो पैदा हुए। तो भयावह फिर बाद में कृष्ण बलराम ने उनका उनको परास्त किया। और अभक्तों का संग हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि वो हमारे आत्मा के लिए सबसे बड़ा परधर्म है, अभक्तों का संग। तो कलयुग में यदि कोई बोले कि अरे भाई मैं ना तो ब्राह्मण हूं ना क्षत्रिय ना वैश्य, हम तो सब जन्मना जायते शूद्र कलयुग में, तो जब अभक्तों का संग हम करते हैं तो हमारे आत्मा के लिए वो परधर्म है। और इसलिए अंत में ये परधर्म और स्वधर्म की व्याख्या श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तरीके से की है कि हमें कैसे समझना है ये पूरा जो श्लोक है अभी, हमें कैसे समझना है अगर संक्षिप्त रूप में एक स्लाइड में समझने की कोशिश करें तो श्रील प्रभुपाद ने श्लोक कोट किया सातवें अध्याय का भगवद गीता का, दैवी हेश गुणमयी मम माया दुरत्यया। तो जो पहली दो लाइन है इस श्लोक की, ये पहली दो लाइन बता रही है परधर्म क्या हो रहा है जीव का। परधर्म क्या हो रहा है कि ये जो माया है, ये जो दैवी शक्ति है भगवान की, ये जो गुणमयी है दुरत्यया है, उसकी शरण जब आत्मा ग्रहण करता है या जीव ग्रहण करता है तो वो अपने स्वधर्म को छोड़कर परधर्म का पालन कर रहा है, इसलिए उसका जीवन भयावह हो रहा है। तो जीव भौतिक संसार में भयावह स्थिति में क्यों है, वो जब दैवी येश गुणमयी मम माया दुरत्याय जो भगवान ने बताया है ये सातवें अध्याय का जो श्लोक है, जब इसका पालन कर रहा है। और स्वधर्म भगवान इसी श्लोक में कह रहे हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंती थे, कि जब वो जीव उस पर धर्म को छोड़कर अपने स्वधर्म में स्थित हो जाता है, अर्थात जब वो मेरी शरण ग्रहण करता है, भगवान बोल रहे हैं, तब मैं उसे इस भव सागर से पार कर देता हूं। तो संक्षिप्त रूप में यदि हमें समझना है आज के श्लोक का परधर्म स्वधर्म, तो ये है कि माया के जंजाल से माया के शरण से मुक्त होकर जब हम अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की सेवा, भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन, भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण, जब इसमें हम लगेंगे तो ये हमारे लिए स्वधर्म। और इसमें यदि हम दोष पूर्ण भी यदि करते रहें, यदि इसमें हम सफल भी क्यों ना हो, परंतु भगवान क्या कह रहे हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेय, कि इसके अंदर हमारा वास्तविक श्रेय छिपा हुआ है। तो इसलिए तीसरे अध्याय का, हालांकि बहुत से महत्वपूर्ण श्लोक हैं इस अध्याय के, परंतु उन महत्वपूर्ण श्लोकों में से आज का जो श्लोक है वो बहुत ही प्रैक्टिकल महत्वपूर्ण हमारे लिए कि हम कैसे हमारे स्वधर्म में स्थित होकर हमारा परम श्रेय को प्राप्त करें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के द्वारा। अब अगले श्लोक में अर्जुन का ये प्रश्न, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलाद इव नियोजित। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि मनुष्य को पाप में कौन लगाता है, और फिर एक और श्रृंखला शुरू हो रही है श्लोकों की अगले श्लोक से, 36वें श्लोक से। तो इसकी चर्चा हम करेंगे अगले बुधवार को इसी समय इसी स्थान पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय।